ओम शांति। आप सभी खुशियों के सागर परमात्मा की संतान मास्टर खुशियों के सागर हैं। खुशी तो हम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। आत्मा सृष्टि के आदि में सतयुग त्रेता में खुश थी, लेकिन द्वापर युग से जब आत्मा स्वयं को भूल देह भान में आई, विकारों के बस संकल्प बोल कर्म हुए, तो आत्मा दुखी होना शुरू हुई और कलयुग के अंत तक अति देह अभिमान और अति दुख बढ़ गया। ऐसे समय पर शिव बाबा ने आकर हम आप बच्चों को अपना बनाया और ज्ञान दिया कि बच्चे तुम खुशियों के सागर की संतान हो, तो खुश रहने की बाबा ने युक्ति बताई है, दुखों की दुनिया, लेकिन इस दुखों की दुनिया में ब्राह्मण आत्माएं सदा खुश रहें, उसकी विधि बाबा ने बताई। वो विधि है चार। चार बातों का अगर हम स्वरूप बन जाएं, तो ब्राह्मण आत्मा सदा खुश रह सकती है। पहला है पवित्रता, दूसरा है सत्यता, तीसरा है निर्भयता और चौथा है निश्चिंतता। जब चार बातें हैं तो इसका रिजल्ट है खुशी। वो आत्मा सदा खुश रहेगी। तो सदा खुश रहने के लिए सबसे पहले आप अपने मन बुद्धि को हल्का करो। क्या? कि आज तक जितनी आपके बुद्धि में नॉलेज है, कौन सी कि किसी को दुख दिया, हमारे कारण कष्ट हुआ है, दुखी है वो, आप उनसे क्षमा मांग लो और अगर किसी ने आपको कष्ट दिया है, आपके मन में बार बार वो बात उभरती है, तो आप उसे क्षमा कर दो। क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो तो आपका मन बुद्धि हल्का हो जाएगा। क्षमा मांगने की और क्षमा करने की विधि क्या है। हो सकता है जिससे आपका कोई टकराव हुआ हो, आपके द्वारा दुख पहुंचा हो या किसी के द्वारा आपको दुख मिला हो, वो सामने ना हो, बहुत दूर हो, तो क्षमा मांगने की और क्षमा करने की बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई है। आज प्रयोग करके देखना। जिस आत्मा को आपको क्षमा करना है या आप इनडायरेक्ट में नहीं जानते हैं किसको दुख दिया है, स्पष्ट रूप से नहीं मालूम है, तो भी वतन में जिसको मालूम है उसको इमर्ज करो। बाप दादा सामने बैठा है, आप भी वतन में इमर्ज हो जाओ और जिन आत्माओं को बारे में आपको नॉलेज नहीं है, मनसा से उन्हें भी इमर्ज करो और इमर्ज करके अपने संकल्प बाप दादा को दो कि बाबा मुझ आत्मा से अगर इनको कोई तकलीफ हुई है जाने अनजाने में, बाबा मैं आत्मा इनसे क्षमा मांगती हूँ और आगे से कभी दुख नहीं दूंगी। इसी रीति से क्षमा करो और इसी रीति से क्षमा मांग लो, तो जो बाबा के थ्रू आप करोगे तो बाबा उन तक पहुंचा देगा और उसका रिजल्ट आप देखेंगे कि क्षमा उसने कर दिया है या हमने क्षमा कर दिया है, उसका रिजल्ट आपकी मन बुद्धि हल्की हो जाएगी, हल्कापन महसूस होगा। जो बात आपके दिल को बार बार खाती थी वो बात मिटती हुई महसूस होगी, आपके दिल को नहीं खाएगी। अगर आप डायरेक्ट क्षमा मांगते हो या क्षमा करते हो तो वो आपकी क्षमा पहुंचती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम क्षमा मांगते हैं या करते हैं तो बीच बीच में उसका अवगुण भी याद आ जाता है। जब अवगुण याद आया तो आपका वाइब्रेशंस वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, अवगुण दीवाल बन जाएगा। इसलिए आप अपना संकल्प बाबा को दो, सच्चे दिल से दो, बाबा ऑटोमेटिक करा देगा। तो पहली बात तो आप क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। आपके क्षमा करने के बाद अगर फिर भी मन में आपको आ जाता है तो यही कर्म दोबारा बाबा के सामने रखकर फिर क्षमा करो। तो आप देखेंगे अगर गहरा कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 बार ऐसे करने से हल्के हो जाओगे। लेकिन सच्चा दिल, सिर्फ दिखावा नहीं, सच्चा दिल हो तो हो सकता है। जब आपका मन हल्का हो जाए, इधर उधर डिस्टर्बेंस ना करे, क्योंकि ये ऐसा है जैसे लगाव वाली आत्मा, जिसके साथ लगाव हो जाए तो ना चाहते हुए उसकी याद आती है। ऐसे सेम रूप टकराव वाली के साथ जितना आप भूलना चाहोगे उतना ही ज्यादा याद आएगा। टकराव भी अगर किसी से हो गया है तो इसलिए पहले क्षमा करो, क्षमा लो, मन को हल्का करो। चाहे लौकिक में है चाहे कहीं भी है, आप इतना संकल्प लाओ कि मैं किसकी संतान हूं। जिस भगवान से सारी दुनिया क्षमा मांगती है मैं उसकी संतान, मास्टर क्षमा का सागर हूं। ये संकल्प इमर्ज करो। या जब आप आत्मा सतयुग से नीचे द्वापर युग में आते हैं तब आपकी मूर्तियों से सारी दुनिया क्षमा मांगती है। तो जब अभी क्षमा किया है तब यादगार रूप आपका क्षमा मांग रहे हैं। किया है तो इसलिए क्षमा करो और क्षमा लो। क्षमा करने के बाद, मन हल्का होने के बाद फिर पहली बात अपनाओ पवित्रता। पवित्रता माना ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचारी तो बहुत लोग हैं। पवित्रता की गूढ़ परिभाषा है कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना पहुंचे, आपके द्वारा दुख ना हो। मनसा की पवित्रता का आधार है आपकी मनसा पवित्र है, उसका आधार है एक मन से सदा बाबा को याद करते रहो। ये मन में सदा बाबा की याद रहे। दूसरी बात, मन में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। सामने वाला कुछ भी दे लेकिन आपकी शुभ भावना हो, याद रखना, ब्राह्मण ब्राह्मणों का हिसाब किताब बहुत ज्यादा है। 84 जन्म में देखो, ज्यादा जन्म हमारा आप सबका इनके साथ ही रहा है। जब जन्म ज्यादा इनके साथ है तो हिसाब किताब किसके साथ होगा? इन्हीं के साथ होगा। इनके साथ है इसका प्रूफ कि ब्राह्मणों के साथ ज्यादा है, उसका प्रूफ है जैसे आप सब पार्टी में आए हैं, आपकी टीचर बहन सबको लेके आई है, आप लोगों में से मतलब आपके ग्रुप में से किसी एक को बहन जी स्पेशल दादी से मिलाए, स्पेशल बाबा से मिलाए, आपको नहीं पूछें, सिर्फ उसी एक को ही पूछें, तो आपकी क्या हालत होगी? समझ सकते हैं ना, कितना संकल्प चल जाएगा, इनको ही क्यों, मुझे क्यों नहीं। लेकिन अगर उसी जगह पर एक अज्ञानी आत्मा को बहन जी दादी से मिलाती, बाबा से मिलाती, तो आप खुश होते, वाह एक नई आत्मा और अपने परिवार में आई। तो अज्ञानी को देखकर खुश हो रहे हैं और ब्राह्मण को देखकर परेशान हो रहे हैं। तो ये है ब्राह्मण ब्राह्मण आत्माओं का हिसाब किताब बहुत ज्यादा है। इसलिए पवित्रता में सबसे पहले मन में बाबा की याद हो, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना हो। दूसरा है वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता अर्थात आपकी वाणी के द्वारा सबको बाबा का परिचय मिले, आपकी वाणी के द्वारा हर आत्मा की चढ़ती कला हो, आपकी वाणी के द्वारा हर एक का जीवन महान बने, इसी महान बनाने का यादगार कहा गया है इनके तो एक एक शब्द महावाक्य हैं। तो वाणी महावाक्य का काम करे, महावाक्य अर्थात महान बनाने वाले वाक्य अर्थात शब्द। आप अपनी तरफ से श्रीमत प्रमाण बोलो, सामने वाला हो सकता है आपकी वाणी से खुश ना हो, लेकिन उसका हिसाब किताब वो जाने, लेकिन आपके शब्द महावाक्य हो। कर्म की पवित्रता अर्थात आपका हर कर्म चरित्र अनुभव हो, चरित्र अर्थात आपके करते हुए कर्म को देखकर हर एक के अंदर प्रेरणा आए कि हम भी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, इन जैसा करें, जैसे आपके मन में सदा रहता है ना, बाबा कैसे चलता था, बाबा कैसे बोलता था, बाबा कैसे बैठता था, ऐसे हम करें। तो हर कर्म प्रेरणा देने वाला हो, चरित्र अनुभव हो, ये है कर्म की पवित्रता। तो मनसा वाचा कर्मणा सबसे पहले आत्मा को पवित्र बनाओ। जब आत्मा पवित्र बनती है तो उसकी पहली निशानी उसके जीवन में सत्यता आने लगती। सत्यता जो खुश रहने का दूसरा आधार है। सत्यता का मतलब ये नहीं कि हमें सच ही बोलना है, सच तो बोलना है, लेकिन बाबा कहता है बिजनेस में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है। सत्यता का मतलब है, सत्य क्या है? सत्य है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। सबसे बड़ा सत्य है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। ये जो बाबा कहता है कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, इसका मतलब नहीं कि संसार झूठा है, सबका शरीर झूठा है, नहीं, वो तो है, दिखाई दे रहा है, लेकिन झूठा का मतलब है आत्मा लेकिन मानते शरीर हैं, इसलिए झूठा है। सत्यता अर्थात अपने को आत्मा समझना और आत्मा समझकर व्यवहार में आना। लौकिक संबंधी हैं ये, जानते हो, रिश्ते में बच्चे हैं, पत्नी है, नॉलेज है, लेकिन आंतरिक स्थिति हो कि ये आत्मा है, शिव बाबा की संतान है। तो सत्यता अर्थात सत्य स्वरूप में रहना, सत्यता के सागर परमात्मा से सर्व संबंध रखना। लेकिन आत्मक स्वरूप में रहने के लिए आत्मा की जो चार स्टेजेस है, जब आप उस चार स्टेजेस में स्वयं को सदा रखेंगे तब आप आत्मक स्वरूप में रह पाएंगे। वो चार स्टेज है। पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, ये आत्मा की चार स्टेजेस हैं। इन चारों में जब आप अपने को रखेंगे तब आप आत्मक स्वरूप में रह पाएंगे। पांडव क्या समझते, चारों चार हैं या चारों एक ही है? चार है, शक्तियां भी कहती चार है। चीज जब चार शब्द है तो चार है। पहली बात है देही अभिमानी। देही अभिमानी अर्थात आत्मा इस देह का आधार लेकर के कर्म करे, क्योंकि जब तक आप इस साकार सृष्टि पर हो तब तक कर्म के बिना रह नहीं सकते। तो आत्मा को कर्म तो करना ही है, लेकिन इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म करे। मैं आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा ये कर्म कर रही हूं। इंद्रियों का आधार लो, इंद्री स्वरूप नहीं हो, इंद्रियों का आधार लो। मैं तो हूं ही ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, हूं बिंदु स्वरूप, इन इंद्री के द्वारा कर्म कर रही हूं। बिंदु स्वरूप आत्मा आंख के द्वारा देख रही हूं। आंख देख रही है लेकिन कॉन्शियस बिंदु स्वरूप की हो। मुख बोल रहा है, कॉन्शियस बिंदु स्वरूप का हो। जब ये अभ्यास कर्म में बढ़ाओ तब आप आत्मक स्वरूप की तरफ आपकी स्थिति बढ़ने लगे। दूसरा है आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी अर्थात जब आप योग में बैठते हैं उस समय आत्मा को शरीर की या इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। वो तो जो क्रिया है वो तो चलती रहती ऑटोमेटिक ही, सांस लेना ये सब तो चलता रहता है, लेकिन कोई कर्म नहीं कर रहे हैं इसलिए उस समय आत्मा टोटल इस शरीर से अलग होकर मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, टोटल बिंदु रूप बन करके बाप को याद करना। जैसे शरीर है ही नहीं, मैं हूं ही ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, बस बिंदी आत्मा हूं। ये कॉन्शियस बढ़ाओ कि हूं ही बिंदु स्वरूप, चमकता हुआ दिव्य सितारा, भगवान का बच्चा, महान आत्मा, होवनहार देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, इस स्मृति में रखो। सिर्फ बिंदी हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ये थोड़ा मुश्किल है। बिंदी हूं लेकिन कौन सी बिंदी हूं, उस सोमान को रखो। तीसरा है विदेही। नहीं, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, तीसरा विदेही। विदेही अर्थात काम काज करते हुए, बोलते चालते उठते बैठते किसी न किसी सोमान में रहो। सोमान देह अभिमान को खत्म कर देगा। सोमान आपके संकल्प बोल कर्म भाव भावना सब चेंज कर देगा, क्योंकि जैसी स्मृति स्वयं के प्रति होती है वैसे दृष्टि वृत्ति संकल्प सब चलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ब्रह्मा बाबा को ये सोमान था कि मैं प्रजा पिता ब्रह्मा हूँ, प्रजा पिता हूँ, सारी सृष्टि का पिता हूँ। तो कोई भी आता था, चाहे बुढ़ा हो, बाबा से भी बुढ़ा हो, तो भी बाबा उसे बच्चे बच्चे कहता था, बच्चे बच्चे बच्चे, क्योंकि सोमान था मैं प्रजा पिता हूँ। और प्रजा पिता के सोमान के भान से जो बाबा पिता बच्चे 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 कहता था, उस बच्चे शब्द में जादू भरा होता था, क्योंकि सोमान युक्त शब्द था। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार कहीं बाबा ने मुरली चलाई थी कि थोड़ा चीन और भारत की लड़ाई का था कि थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, ये तो दे देना चाहिए था भारत को। बहुत पुरानी बात है, साकार बाबा के समय की बात। तो वो मुरली गवर्नमेंट के हाथ में लग गई और बाबा को अरेस्ट करने आ गए, क्योंकि देशद्रोह का मामला बन जाता है, देश के खिलाफ की बात आ जाती है। तो बहुत क्रोधित थे, सब कुछ था। तो पहले तो बहनों ने बहुत कोशिश की बिठाने की, जब नहीं माना तो बोला अच्छा ठीक है मैं बाबा को बुलाती हूँ। तो गए बाबा से, बोला बाबा ऐसे आए हैं, बहुत क्रोधित हैं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे को बिठाओ, मैं भी मिलता हूँ। तो गए डिस्टिंगों में बैठे, बाबा आए, बाबा बोले अच्छा बच्चे, मीठे बच्चे, अपने बाप के घर में आ गए ना, बोलो बच्चे क्या काम है। जैसे बाबा ने बच्चे 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 कहा, एकदम ठंडा हो गया, बोला बाबा आया था अरेस्ट करने, गुस्सा में था, ठंडा हो गया और बोला बाबा आपने ये क्या बोला है देश के लिए। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो बोला ये देखो लिखा, बोला मैं क्या करूं, ऊपर से शिव बाबा आता है बोल के चला जाता है, मैं क्या करूं। और तो वो क्या कहता है, अच्छा बाबा, ऐसे हाथ जोड़ के कहता अच्छा बाबा, अब शिव बाबा से बोल देना कि ऐसे दोबारा ना बोले। तो बोला ठीक है कह दूंगा। तो बच्चे शब्द में इतना जादू था, सोमान भरा शब्द था, कि सोमान भरा शब्द का प्रभाव पड़ता है। इस सोमान भरे शब्द का प्रभाव देखो, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक पत्नी जसोदा थी, जिसके साथ बाबा ने पत्नी का संबंध इतना समय निभाया, वो भी जब शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश हुआ और ब्रह्मा बाबा अपने सोमान में आया कि मैं प्रजा पिता ब्रह्मा हूं, तो बाबा अपनी पत्नी को जसोदा बेटी कहता था, जसोदा बेटी। आज तक कोई भी धर्म पिता अपनी पत्नी को बेटी नहीं कह पाया है। माँ कहता था बहन माना, माँ माना पवित्र रहने के लिए, क्योंकि वो कोई प्रजा पिता नहीं था। लेकिन ये प्रजा पिता है तो सोमान में रहने से सब कुछ बदल जाता है। आप भी कोई भी सोमान ले लो, कोई भी जो भगवान का टाइटल, वो आपका सोमान मास्टर हो, शिव शक्ति हो, ब्रह्मा कुमार हो, मास्टर भगवान हो, कोई भी सोमान ले लो, आपका संकल्प भाव भावना सब बदल जाएगा। तो विदेही अर्थात चलते फिरते उठते बैठते किसी सोमान में रहना। चौथी बात है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है तो बिना शरीर के, जब आपको टाइम मिले तब आप बैठकर टोटल स्वयं को डिटैच कर परम धाम में बाबा के पास बिठा दो। जब मैं आत्मा परम धाम में थी, बाबा के सन्मुख थी, कोई शरीर नहीं, कोई बात नहीं शरीर की, बस आत्मा ही आत्मा और मेरा बाबा। परम धाम में बिठाने की प्रैक्टिस करो तो जितना परम धाम में बाबा के पास बिठाने की प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस आपको अंत में शरीर छोड़ने में बहुत मदद देगी। संकल्प किया, उड़ गए, क्योंकि जितनी देर कंटिन्यू आत्मा बाबा के पास बैठती है कंटिन्यू, उतना ज्यादा फास्ट विक्रम विनाश होते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अगर 5 मिनट कंटिन्यू और कोई संकल्प ना आए, 5 मिनट कंटिन्यू आत्मा और परम आत्मा आमने सामने बैठे रहें और कोई संकल्प ना आए, तो आत्मा के 1 जन्म का पाप खत्म हो जाता है। 1 जन्म का, अगर 5 मिनट कंटिन्यू बैठे रहे। तो इस अभ्यास से आपके खाता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर आत्मा अंत में कर्मातीत बनकर सहज उड़ जाएगी। तो अशरीरी अर्थात अपने को जब समय मिले परम धाम में बिठाने की प्रैक्टिस करो। जब ये चारों अभ्यास करते रहो तब आत्मक स्वरूप में टिकने की स्थिति आपकी बढ़ती जाएगी। तीसरा है निर्भयता। निर्भयता, डर किससे लगता है? मौत से, पाप कर्म से, या आगे कहीं कुछ ऐसी घटना न घट जाए, इसको सोचकर मन दुखी हो जाता है? इन सब का समाधान 2 शब्द में है, ड्रामा और बाबा। हमारा बाबा सर्वशक्तिवान है और मेरा बाप है, सर्वशक्तिवान है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, और वो मेरा बाप है तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता, बाप है। पहली बात। दूसरी बात, बाबा ने कहा संगम योग कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, इसलिए सब कुछ कल्याण ही होगा। अगर कुछ बुरा भी है उसमें भी कल्याण हो जाएगा। तो तीन दिन पहले मुरली में था, तो एक बाबा दूसरा ड्रामा। संगम युग में हर एक चीज ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी, चाहे वर्तमान में अकल्याण दिखाई देता है लेकिन कल्याणकारी है। लेकिन ब्राह्मणों का ड्रामा लगता नहीं है, कुछ थोड़ी भी घटना होती है संकल्प चलना शुरू हो जाता है, लगता नहीं ड्रामा में, फुल स्टॉप कर दे वो नहीं होता है। उसका कारण दो है। एक, ड्रामा लगाने की हम प्रैक्टिस नहीं करते, सोचते अपने आप ही हो जाएगा। जब ड्रामा लगाने की प्रैक्टिस करें छोटी छोटी बातों से, तो अंत में बड़ी बात पर भी लग जाएगा। दूसरी बात, ड्रामा की तीन विशेषता है, उन तीनों विशेषताओं से ड्रामा को देखो तो सहज हो जाएगा, सहज ड्रामा लग जाएगा। वो तीन विशेषता है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा एक्यूरेट। कल्याणकारी, न्यायकारी, एक्यूरेट, इन तीन रूप से ड्रामा को देखो। हम क्या करते हैं, सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, इसलिए हमें कल्याण दिखाई नहीं देता है। अकल्याण में कल्याण इतना बड़ा है, एक एग्जाम्पल देता हूं। कई बार आप मुरली में सुना होगा, बाबा कहता है मान लो आप दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में आपकी टांग कट गई, बहुत बड़ा कल्याण हुआ। सुना है मुरली में आपने ये शब्द बाबा के। अब टंगी कट गई टांग और हो गया कल्याण, ये कैसे? इसका एग्जाम्पल देता हूं, कैसे, सत्य घटना बताता हूं। एक बहन थी जो साकार बाबा के समय, बेगरी पार्ट के समय, जब यज्ञ में थोड़ा खाने पीने का भी मुश्किल था, उस समय उस बहन ने यज्ञ में बहुत मदद दिया, तन मन धन से सबसे बहुत मदद दिया। और ऐसे समय पर जो मदद देता है आवश्यकता के समय पर, ऐसे का पदम गुना भगवान देने के लिए बांधाय मान है, भगवान को देना ही पड़ता है। तो एक बार वो बहन सुबह उठी चाय बनाने के लिए, तो छोटा सा किचन था, बहुत पुरानी साकार बाबा के समय की बात है, समझ सकते होंगे कितनी पुरानी बात। उस समय गैस निकले थे, तो छोटा सा किचन था, वेंटिलेटर भी नहीं था, तो उसने रात को गैस जहां है उससे तो बंद कर दिया चूल्हे से, लेकिन जो सिलेंडर है वहां से गैस बंद नहीं किया। तो रात को चूहे ने पाइप को कुतर दिया और सारी गैस लीक कर गई। दरवाजा बंद था, वेंटिलेटर था नहीं, तो बहन ने लाइट जलाई, पास तो उसको आई लेकिन चाय बनाना था, तो उसने जैसे माचिस जलाई गैस चारों तरफ फैला हुआ था, पकड़ लिया और वो बहन उसी में जल के मर गई। अब आप देखो, जब इतनी बाबा की मदद उसने की थी तो उस समय बाबा ने क्यों नहीं टच किया कि बच्ची नहीं माचिस नहीं लगाओ या थोड़ी देर बाद जलाओ, गैस निकल जाने दो। तो जब भोग लगाया, बाबा से पूछा कि बाबा आपने उस समय मदद क्यों नहीं दिया जबकि बच्ची ने इतनी मदद आपके यज्ञ में की है, तो बाबा ने संदेश में कहा कि बच्ची ने आई बेल के समय यज्ञ में बहुत मदद दिया, बाबा इसका रिटर्न पदम गुना देने के लिए बांधाए मान है, लेकिन इस बच्ची के सिर पे इतना पाप कर्म का बोझा था, इतना था कि ये बच्ची योग और सेवा से खत्म नहीं कर सकती थी। अब इसका सारा खाता खत्म हो गया, अब पद ऊंचा फिक्स है। तो देखो कितना बड़ा कल्याण है इसका। ये तो एक जन्म शरीर गया, लेकिन 21 जन्म तक ऊंचा पद तो फिक्स होगा, ये तो एक दिन छूटना ही है। तो ड्रामा को तीन रूप से देखो तो सदा आप निर्भय रहेंगे, कोई भय नहीं रहेगा। और जब निर्भय बन जाते हैं तो उसके बाद निश्चिंतता आ जाती है, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, ये अंदर आ जाता है कि मेरा साथी, मेरा रक्षक बाबा बैठा हुआ है, बाबा का बरस हस्त मेरे सिर के ऊपर है, ना कोई दुख, ना कोई गम, ना कोई चिंता, सबसे आत्मा मुक्त हो जाती है। क्यों? जिसने ये तीन बातें अपना ली वो बाबा के श्रीमत पर 100% स्वयं को चलाएगा, और जहां श्रीमत पर चलाया वहां भगवान गारंटी लेता है कि जवाबदार मैं तुम्हारा हूं। तो इन चारों बातों को अपना कर सदा निश्चिंत लाइफ बना करके, जब कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आत्मा सदा खुश होगी। तो सदा खुश रहेंगे तब यही संस्कार 21 जन्म तक खुश रखेंगे, और द्वापर युग से आपकी मूर्ति के आगे भगत खुशियां मांगेंगे, दाता मुझे एक पल की खुशी दे दो। ठीक है, इन चारों बातों को अपनाकर सदा खुश रहना ही है। अच्छा, ओम शांति।